शांति। कुछ लोगों का सजेशन था, उस अनुसार विषय है हमारा ईश्वरीय नियम और संयम और मर्यादा। ईश्वरीय नियम, संयम और मर्यादा। आप सभी महसूस करते होंगे कि बाबा हमारी बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं, है ना? ऐसा महसूस होता है। कौन सी पालना? अलौकिक, रूहानी। अलौकिक तो है, परंतु कौन सी है? रूहानी पालना। अर्थात क्या? रूह को, आत्मा को, आत्मा की पालना कर रहे हैं। जैसे शरीर की पालना के लिए तो आप जानते हैं कि हवा, पानी और खुराक की आवश्यकता है, वैसे आत्मा की पालना के लिए, रूह की पालना के लिए हमें ज्ञान और योग, धारणा और सेवा, जो सभी विषयों के अंदर ऑटोमेटिकली आता ही है। तो जैसे एक पौधे को जब हम बड़ा करते हैं, है ना, बीज बोते हैं, पौधा बड़ा होने लगता है, तो क्या करना पड़ता है? एक तो उसको पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, परंतु और उनकी केयर चाहिए, और अंदर में जो भी आजू बाजू में घास फूस वगैरह निकल आता है तो उसको निकालना पड़ता है ना? नहीं तो सारा खुराक वो घास फूस खा जाता है और पौधा बेचारा बड़ा हो ही नहीं सकता है। और उसको सेफ्टी में रखा जाता है ना, उसको सेफ्टी में रखा जाता है। तो बाबा ने भी देखो, एक इतनी बड़ी बात है कि इस कलयुग में, कलयुग जिसको अभी कहते हैं घोर कलयुग, हलाहल कलयुग कहते हैं, घोर कलयुग कहते हैं, अति तमो प्रधान दुनिया है। ये क्या है? अति तमो प्रधान दुनिया में बाबा ने हम आत्माओं को सिलेक्ट किया है ना, और नई दुनिया बना रहा है। जैसे बाबा कभी कभी मूली में कहते हैं ना कि वो जो पुंगरे की बात आती है, कि उसका एकदम बिल्ली के पुंगरे की बात आती है कि भी उनको एकदम सेफली रखा, वातावरण कैसा भी था, तूफान ये वो सब। आजकल दुनिया में क्या है? रावण का तूफान है, जोरदार है ना, और ऐसे तूफान में बाबा बच्चों को बड़ा संभाल से शक्तिशाली बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे। मुझे तो लगता है कि बाबा ही हर आत्मा को सबसे पहले कार्य बाबा का है। बाबा हम आत्माओं को, बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनाना बाबा का काम है, और फिर ब्राह्मण से देवता बनना हमारा काम है ना। जब बाबा हमें अपना बनाते हैं तो कहते, बच्चे तुम जैसे हो वैसे मेरे हो, है ना, कोई कोई डिफरेंस नहीं रखता है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, गरीब है या शाहूकार है, गोरा है काला है, कोई क्या न्याज जात का है, कोई क्या न्याज जात का है, कोई धर्म क्या है, कुछ भी है, अरे कोई गुणवान है कोई अवगुणवान है ना, कैसा भी व्यक्ति होगा। व्यक्ति खुद कभी कभी कहता है कि बहन हम आपके आश्रम पे आने लायक नहीं है, आप हमें निमंत्रण देते पर हम नहीं आ सकते, हम आएंगे तो आपका आश्रम खराब हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, कहते हमारे तो कदम रखने लायक ही हम नहीं है। पर बाबा उन सबको भी क्या कहते, नहीं हम क्या कहते, नहीं नहीं आओ आओ आओ, हमारा आश्रम अपवित्र नहीं होगा, आप पवित्र हो जाओगे, पर हमारा आश्रम अपवित्र नहीं हो सकता है। तो जब हम आते हैं तो बाबा हरेक के लिए क्या कहते, तुम जैसे हो वैसे मेरे हो। परंतु जब वापस घर जाने का समय होगा तो क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ले जाऊंगा? ना 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 ना, तब ऐसा नहीं कहता है। फिर कहते हैं कि तुमको पवित्र बनकर के ही मेरे साथ आना होगा। तो ये जो यात्रा है ना, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की, फरिश्ता से देवता फिर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, जो फरिश्ते बने वो तो देवता बन जाएंगे, परंतु ब्राह्मण सो फरिश्ता, ये हमारी संगम युग की यात्रा है। हरेक को करनी है, परंतु बाबा फिर भी हमारी सुरक्षा के लिए बाबा ने हमें ईश्वरीय नियम और मर्यादा में बांधा है। और हम सक्षम हैं, है ना? बाबा ने हम लोगों को सिलेक्ट किया है, हम आत्माओं को, कौन सी आत्माओं को सिलेक्ट किया है पता है? हाँ? कोटों में कोई पर क्वालिटी क्या है? हाँ? पहले की देवात्मा है, पर अभी क्या विशेषता है? क्या हर एक के अंदर विशेष गुण होगा, अलग अलग गुण होगा, और हाँ? पहचाना वो तो निमित है, पर सिलेक्ट बाबा ने किया है, समझा? हाँ? हाँ, हमने बाबा को नहीं पहचाना, बाबा ने हमें पहचाना है ना? बहुत समय से बिछड़े हुए थे, तो बाबा ने जो क्वालिटी देखी है, जैसे बाबा कहते मैं तुमको बंदर से मंदिर लायक बनाने आया हूं, पत्थर को पारस बनाने आया हूं, है ना? बाबा हमारी जैसे कि मूर्ति बना रहा है, मंदिर के लायक हमारी मूर्ति बना रहा है। तो आप सोचिए कि हर पत्थर मूर्ति बन सकते हैं, है ना? बाबा हमें कहते हैं तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, पर फिर भी हम कैसे पत्थर हैं? पत्थर तो बन गए हैं, कोई बात नहीं, पत्थर बुद्धि तो बन गए, पर कैसे पत्थर? मूर्ति बनने वाले पत्थर। क्वालिटी जो है पत्थर की वो कौन सी है? मूर्ति बनने वाला पत्थर। तो मूर्ति बनने वाले पत्थर में क्वालिटी क्या होती है? हाँ? क्या क्या? हाँ, टूटेगा नहीं। मुख्य क्या है क्वालिटी उसकी? पत्थर काला भी हो सकता है, पत्थर सफेद भी हो सकता है, परंतु मूर्ति बनने वाला पत्थर में सहन शक्ति बहुत होगी, अर्थात कितने भी छीनी और हथौड़े पड़ेंगे टूटेगा नहीं, उसकी मूर्ति बनती जाएगी। अब देखो चेहरा बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है ना? मूर्ति का चेहरा बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत। तो हम बाबा के वो बच्चे हैं जिसके अंदर परिवर्तन करने की शक्ति है, मूल शक्ति हरेक के अंदर। बाकी विविध गुण तो होंगे, वो तो अलग बात है, परंतु मूल शक्ति कौन सी है? कि परिवर्तन करने की शक्ति। इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, है ना, तमो प्रधान दुनिया के अंदर, जहां लोगों के विचार अलग है, मान्यता अलग है, आदतें अलग है, ऐसी दुनिया में बाबा ने हमें कहा कि बच्चे तुम पवित्र बनो, और बन गए। बाबा ने कहा बनो और बन गए, तो कौन बन सकते हैं? जिसके अंदर ये परिवर्तन की शक्ति बहुत कम लोगों के अंदर होती है। संसार समाज में बहुत करके ऐसा कहा जाता है कि संसार में लोग फॉलो करने वाले ज्यादा होते हैं, है ना? 10 लोग जो करते होंगे वो बाकी 10 लोग करने लग पड़ेंगे, पर कुछ नया करने की बात हो तो कोई जल्दी से तैयार नहीं होता है। तो बाबा ने हमें सब नई बातें बताई है ना? ये पवित्रता की बात तो अभी तक लोगों की बुद्धि में बैठती ही नहीं है, नहीं बैठती। साधु संत जो खुद पवित्र रहते हैं उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठता है ना। आश्चर्य की बात तो ये है, खुद तो पवित्र है परंतु जब गृहस्थी को देखता है कि आप लोग घर गृहस्थ में रहने वालों को पवित्र बनाते हो तो फिर कैसे दुनिया चलेगी, उसको तो पता ही नहीं है कैसी दुनिया आने वाली है, क्या होने वाला है, किसी को कुछ भी पता नहीं। तो इसीलिए बाबा ने ऐसे बहुत इजी नहीं है, है ना, दुनिया के लिए भी डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है कि ये काम करना घर गृहस्थ में रहते हुए। मुझे याद है केवल साधु समाज में भी क्या होता है, उसमें दो प्रकार के साधु होते हैं, एक गृहस्थी साधु पहनते तो वही भगवे वस्त्र है ना, परंतु उसमें भी एक होते हैं गृहस्थी साधु, एक होते हैं सन्यासी साधु। तो सन्यासी साधु गृहस्थी साधु के साथ भी नहीं बैठेंगे, ऐसी उनकी मर्यादाएं होती है, समझा। तो मुझे याद है कि एक बार नीचे शांतिवन में साधु संतों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें जो विशेष सन्यासी साधु और साधु संत समाज के जो थे उनका एक अलग से प्रोग्राम दादी मीटिंग हॉल में रखा था। तो भी वो लोग संकोच करते थे बैठने के लिए, है ना। तो मुझे कोऑर्डिनेट करना था प्रोग्राम, तो मैंने उनको यही बात बताई कि हमें आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ जो भी सफेद वस्त्रधारी भी आपको दिखते हैं वो सभी घर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, वो सभी साधु से भी बढ़कर के। तो उन लोगों को लगा अच्छा ऐसा है क्या, है ना, उनको भी चैलेंजिंग लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात बाबा ने किया है, पौधा एक बाबा कहते मैं सैपलिंग लगा दिया, बाबा कहते सैपलिंग लग रहा है, जैसे कोई भी रोज का सैपलिंग तो लगाते हो परंतु क्या होता है, हाँ चिड़िया वही खा जाती है, जैसे नए नए पत्ते आएंगे चिड़िया खा जाएंगी। तो बाबा ने सिलेक्ट कर लिया पर साथ साथ माया चिड़िया से बचाने के लिए बाबा ने हमें कुछ नियम और कुछ मर्यादाएं दी बचाने के लिए, सेफ करने के लिए, है ना। तो ब्राह्मण किसको कहा जाता है, ब्राह्मण की विशेषता क्या, तो ब्राह्मण के लिए ईश्वरीय नियम क्या है, सबसे पहला तो ये है, जैसे बाबा कहते पासपोर्ट है ये, ब्राह्मण शब्द तभी लगता है जब गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता की ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करते हैं, तभी वो शूद्र से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्राह्मण बनता है। जैसे कल सूरज भाई बता रहे थे कि नई दुनिया लाने के लिए दो मुख्य बल है, एक है पवित्रता का बल और दूसरा है योग बल। आपको याद होगा बाबा मुले में हमेशा कहते हैं कि नए धर्म की स्थापना के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए प्योर सोल चाहिए, परमधाम से प्योर सोल आती है। तो क्या विशेषता है प्योरिटी की, है ना। आप देखिए दुनिया में इतिहास में आप हम सबको पता है कि इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं ये विकार के लिए, जिससे मन भटक जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि गीता में भी लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, पता नहीं चलता है, छिपा हुआ है परंतु आत्मा की शक्ति को खत्म करता है। आत्मा की शक्ति अर्थात कौन सी शक्ति, संकल्प की शक्ति, विचारों की शक्ति, संकल्प की शक्ति। किसी भी धर्म की स्थापना के लिए, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए जबरदस्त संकल्प शक्ति चाहिए। संकल्प शक्ति अर्थात किसी भी एक संकल्प को पकड़ के रखने की शक्ति। संकल्प शक्ति का अर्थ क्या, कि कोई भी एक संकल्प को पकड़ के रखने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बुद्ध धर्म जैन धर्म दोनों समकालीन थे, वो स्थापन हुए तो उनका विशेष बात कौन सी रही? अहिंसा, है ना। अभी अहिंसा, तो उस समय समाज संसार में हिंसा बहुत होती थी, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवियों के नाम पर बहुत हिंसा होती थी। तो उनको क्या सिद्धांत प्रस्थापित करना था? अहिंसा का, अहिंसा का। बहुत मुश्किलात हुई, है ना, बहुत लोग मरे गए, मारे गए, पर तो भी नहीं तो कोई कोई एक डिफिकल्टी आएगी, चलो छोड़ो भाई अहिंसा का अभी नहीं करना, अपने को अहिंसा छोड़ो, जैसा चलता है वैसे चलने दो। नहीं, जो भी धर्म स्थापक होता है वो क्या रहता है? अड़िगम रहता है, अपने में फिक्स रहता है कि नहीं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु कितना भी सहन करना पड़े, परंतु हमें इसी सिद्धांत में रहना है। उसी प्रकार जो पवित्रता की धारणा करता है, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार ऐसे हुआ कि एक साध्वी ऐसे वीरान एरिया में जंगल में उसकी झोपड़ी बना के साधना कर रही थी, पवित्र थी। उस जंगल में कोई एक राज्य का सैनिक सेनापति आया और देखा कि बहुत अच्छी जगह है, तो उन लोगों ने वहां आश्रय लेने के लिए वहां कैंप लगा दिया कि भई हम एक दिन यहां ठहरेंगे रात को, फिर कल जाएंगे। तो इतने में उसको ये झोपड़ी दिखाई पड़ी कि यहां कोई रहता है शायद, तो गया वहां पर, तो इनको देखा, साध्वी को। जैसे साध्वी को देखा तो उसका मन बिगड़ गया, विचलित हो गया। वो साध्वी को भी पता चल गया कि ये तो बीच की नजर तो खराब हो गई है, क्या करे। तो अभी वो आके बैठा, सब कुछ उसके साथ बात किया, सब किया, और एक सेनापति इतनी बड़ी सेना के साथ आया हुआ है, एक बहन का क्या चलेगा उसके आगे, है ना। तो उसने सोचा, बात करते करते फिर उसने मन में ही ठान लिया कि मुझे मेरी अपनी सेफ्टी देखनी है। तो बातें करने लगी उसके साथ, तो फिर बात बात में कहा कि आप लोग तो सैनिक हो, तो आपको तो बहुत घाव लगते होंगे। बोला हाँ, हमारे तो सैनिक मतलब क्या, यही होता है। तो कहती है कि मेरे पास तो क्या है कि जंगल है ना, मैंने बहुत अच्छा एक मलम बनाया है, वो मलम अगर कोई लगाता है ना, तो फिर उससे वो कोई भी घा करे ना उसके पर तो घा लगता ही नहीं है। बोला अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है, बताओ बताओ कहाँ है मलम। तो उसने मलम लाके बताया, तो राजा कहते अच्छा, तो ये पहले तुम्हारे पर ही हम उसका ट्राई करते हैं। कहते ठीक है, करके देख लो, कुछ नहीं होता। तो उसने उसके यहाँ गले पे मलम लगाया, मलम लगा के तलवार मारी, दो टुकड़ा हो गया, मर गई। जब वो मर गई तब उसने राजा को समझ में आया कि वास्तव में तुम नहीं हारी हो, परंतु मैं हार गया, है ना। अपनी पवित्रता के लिए क्या कर दिया उसने, अपनी जान दे दी, परंतु पवित्रता को बचा दिया। तो जिसको हम कहते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, जिसको कहते हैं भी हमारा सर कटेगा पर हम अपना सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे। तो इतना महत्व है पवित्रता का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ पवित्रता का महत्व है, दूसरी तरफ माया भी कोई कम नहीं है, है ना। रावण भी कोई कम नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें ईश्वरीय नियम और मर्यादा में रहना है। मर्यादा में, है ना, प्राप्ति तो कर लिया परंतु फिर भी मर्यादा में रहना है। मर्यादा में अर्थात क्या, बाबा फिर कहते हैं हमें, तुम योगी हो, तुम तपस्वी हो, यहां तक बाबा कहते हैं एक का अंग न अड़े दूसरे से, है ना, अंग से अंग न मिले, बाबा मुरली में ये शब्द यूज करते हैं। तो हमें भी अभी जो एक तो विकार है, तो बहुत बड़ी बात है, बाबा ने छुड़वा दिया, परंतु हमारी जो कर्मेंद्रिय है, बाबा हमें जो कर्मेंद्रिय जीत बनने को कहते हैं, इसमें स्पर्श भी एक कर्मेंद्रिय बनती है, वो भी अपवित्रता में आता है। तो मर्यादा, अपवित्रता अर्थात फिर क्या होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अपवित्रता, अर्थात यही है कि हमारा मन जाता है। मुख्य बात क्या है, हर विकार विकार क्यों है, कोई भी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई भी विकार विकार क्यों है, क्योंकि उसके पीछे हमारा मन भागता है। मन जाता है ना, और फिर मन अटकता है वहां जाके, और जैसे बाबा कहते वो लटकता है ना। कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि द्वापर से देहभान शुरू कैसे हुआ होगा, कभी कभी मैं सोचती हूँ, चिंतन करती हूँ ना, तो हम आत्माभिमानी होंगे पहले तो, सत्ययुग त्रेता में आत्माभिमानी, तो अभी जैसे हमें आत्माभिमानी बनने में मुश्किल लगता है, वैसे शायद उस समय देहभान में आने में भी मुश्किल ही तो होगा ना, एकदम थोड़ी होगा, एकदम देहभान में थोड़ी हम आ गए होंगे, एकदम अपवित्र थोड़ी हम बन जाते हैं, नहीं बन गए होंगे, ऐसा महसूस होता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि शायद द्वापर की शुरुआत में सबसे पहले हमें अपना ही देह महसूस हुआ होगा, है ना, स्पर्श सबसे बड़ी बात है, स्पर्श करके हमें लगा होगा कि हाँ ये मेरा शरीर है, मैं भी वहां से देहभान शुरू हुआ होगा, नहीं तो पहले हमें भान ही नहीं होता है ना, हम वो आत्मभान में सब कुछ करते हैं परंतु जो कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं वो नहीं होती है, बॉडी की कॉन्शियसनेस नहीं होंगी। तो ये इसीलिए बाबा हमें बहुत, अभी बाबा ने क्यों, देखो ये ड्रेस क्यों बाबा ने बनवाया, बहनों का भी ड्रेस बनवाया, गृहस्थ में रहते हुए बाबा क्या कहते हैं फिर, भाई गृहस्थ ही है तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको, शादी वादी में जाना पड़ता है, कुछ पहनना पड़ता है, गहने बहने पहनने पड़ते हैं, वो सब कुछ करना पड़ता है, पर फिर भी वो खाली बाहर, जिसको बाबा मुरली में क्या शब्द कहते हैं, तोड़ निभाना, क्या कहते हैं, तोड़ निभाना, अर्थात क्या, बुद्धि से तोड़ना और व्यवहार में निभाना, हमारी बुद्धि ना जाए, निभाना तो पड़ेगा। लौकिक दुनिया में क्या होता है, हम अच्छी ड्रेस पहनते हैं तो हमारा ध्यान अपनी तरफ ज्यादा होता है, लोगों की तरफ कम, और मन में क्या होगा, कोई हमारी तरफ देखे, हमारी महिमा करे, कोई दो चार तो पूछे कि तुमने कितने की ड्रेस लाए है ना, कुछ गहना नया मीठी मीठी पहनी होगी, अंगूठी पहनी होगी, हार पहना होगा, तो घड़ी घड़ी वहां हमारी नजर जाएगी कि हम करेंगे ऐसा तो कोई हमारे सामने देखेगा, अच्छा कब करा है, नया करा है, अच्छा 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 कितने का हुआ, कोई अगर, अभी आजकल ऐसा भी हो रहा है, कोई ने अगर नहीं पूछा ना तो वो घर आके डिप्रेशन में आ जाती है, क्या किसी ने पूछा ही नहीं, मेरा इतना महंगा ड्रेस था किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं कितने का लाई, कॉन्शियसनेस। पर अभी क्या है, अभी परिवर्तन, कितना भी अच्छा पहन के गए, बाबा कहते है तो पहनो, उसमें क्या बात है, परंतु वो कॉन्शियसनेस नहीं होंगी। तो ये है आत्म उन्नति के लिए मर्यादा, मर्यादा के लिए मर्यादा नहीं है, हमें कोई बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, परंतु आत्म उन्नति के लिए बहुत 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 आवश्यक है। जब तक हमारा मन भागता रहेगा, जब तक मन को भागने के स्थान बने रहेंगे है ना, तब तक मन बाबा में जल्दी से लग नहीं सकता है। तो एक है पवित्रता की धारणा, दूसरा बाबा कहते हैं ब्राह्मण किसको कहा जाता है, शुद्ध अन्न, ब्राह्मण पहचाना कैसे जाता है ना, पहचाना जाता है ना ब्राह्मण कि भाई ये, हाँ पवित्रता की धारणा तो सबको पता नहीं चलेगी, पर ये धारणा सबको पता चल जाती है, आप कहां पर भी गए और अगर आपने कहा कि हम तो नहीं लेते हैं भोजन बाहर का, क्यों तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो क्या है ना, तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। तो ये बाबा ने कितना हमें बचा दिया है, आप सोचिए, केवल भोजन तो निमित्त मात्र है, बाबा ने भोजन की धारणा कराई है, पर उससे कई बातों से हमारा छुटकारा कर दिया। आजकल लोग कोई खास खिलाने वाले होते नहीं है, वो खुशी होते तुम नहीं खाते हो तो भी बहुत अच्छा है ना। मुझे याद है कि शुरू शुरू में हमने जब धारणा के, हम बहुत छोटे थे और बस बाबा ने कहा धारणा कर लिया, दिवाली आती थी किसी के घर गए, ये भी तो उस समय तो अकल नहीं थी कि युक्ति युक्त बोले, वो भी अकल छोटे थे तो अकल नहीं थी, तो बोला तुम हाँ हम तो नहीं खाते बिल्कुल किसी के घर का नहीं खाते, तो बोला अच्छा हम भी तुम्हारे घर आएंगे तो नहीं खाएंगे, भले नहीं खाना उसमें क्या है। अच्छा फिर दो चार दिनों के बाद वो हमारे घर आए, हमने तो सच्चा मान लिया छोटे थे ना कि हम जैसे हमने नहीं खाया वो भी नहीं खाएंगे, तो मैंने तो पानी भी नहीं पूछा घर आए तो मैंने तो पानी भी नहीं, अरे लड़की तुम लाओ ना पानी वाले, मैंने सोचा कि आप नहीं पियेंगे, बोला अरे सब कुछ पियेंगे खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे, ले आओ ले आओ सब कुछ ले आओ, उनको थोड़ी ऐसा है ना। तो हमारी दूसरी धारणा क्या है, शुद्ध अन्न। लोग खुश होते हैं ये नहीं खाते ना लोग, तो हमें चिंता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाते हैं मतलब एकदम नजदीक का परिवार है, प्यार है वो सच्चा प्यार है, दिल का सच्चा प्यार है उनको, तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ एकदम सगे हैं और नजदीक के हैं, दिल का प्यार है तो क्या कहते हैं, हाँ बहनों को क्या कहते हैं, हाँ आप आओ खुद बनाओ खुद खाओ हमें भी खिला दो, तो ये तो बहुत अच्छा, कहते आप आओ हमें शांति हो जाती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, आप बनाओ खुद खाओ और हमको भी खिलाओ, वो तो खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊं कि ये भोजन की धारणा के लिए लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो समर्पित है, क्योंकि दुनिया में तो लोग समझते हैं कि ये तो करना बहुत मुश्किल है। कई भाई बहन जो जॉब करते हैं ना, तो जॉब पे जाते तो भी ये भोजन की धारणा तो करते हैं, कुछ खाते नहीं है बाहर का, तो वो उसके जो बड़े होते हैं वो जब हमारे पास आते हैं, हाँ आपका एक भाई है समर्पित हमारे पास काम करता है, समर्पित क्यों, क्योंकि ये इतनी बड़ी धारणा कौन करेगा। तो ये भी हमारा शुद्ध भोजन ये बहुत बहुत हेल्पफुल है, जरूरी है, क्योंकि सच में ही जैसा अन्न वैसा मन। सूक्ष्म बात है, ऐसा नहीं है कि भी एक दिन खाया और आपको उसका वाइब्रेशन आ जाएगा, हो सकता है कि ऐसा ना हो, परंतु इसकी इफेक्ट अवश्य होती है। योग लगाना आसान काम नहीं है, योग लगाना तो ठीक है, लग जाना आसान काम नहीं, इसलिए ये सब फैक्टर उसमें काम करते हैं। ब्राह्मण की पहचान में, ब्राह्मण की विशेषता में, ब्राह्मण बन जाने के बाद, बीके बन जाने के बाद, तो पहली बात है क्या, उसमें फिर अमृत वेला। जो ब्राह्मण होगा वो अमृत वेला जरूर करेगा, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गया व्यक्ति मीन्स उसके मन के अंदर अमृत वेला की महत्व आ जाता है। शुरू शुरू में लोग आते हैं कहते हमको बहुत देरी से उठने की आदत है, पर क्या होता है धीरे 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 चेंज हो जाते हैं। देरी से इसलिए उठते हैं कि देरी से सोते हैं, है ना, देरी से इसलिए सोते हैं कि टीवी देखते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे रात को 12 बजे तक, फिर से कैसे उठेंगे, पर फिर ऐसा करना ही नहीं है, तो फिर रात को जल्दी सो जाते हैं तो सुबह में जल्दी उठ जाते हैं। तो अमृत वेला, अगर मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, तो अमृत वेला उसकी पहचान है। दूसरी बात क्या, ब्राह्मण है मीन्स मुरली क्लास, है ना, ब्राह्मण है मीन्स मुरली के बिना उसको चलेगा नहीं। बहुत करके तो जो पक्के बीके हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी वो अवश्य मॉर्निंग मुरली क्लास करते हैं, पर बाय चांस किसी को उसी समय जॉब पर जाना है या कोई बाधा है तो फिर हर सेंटर पे इवनिंग क्लास भी जरूर होता है। तो रोज मुरली क्लास मुझे जरूर करना है। गोप गोपियों को पूछा ना भैया, तीन दिवस सुख पूछना हो तो किसको पूछो, गोप गोपी को पूछो, गोपिया किसके पीछे दीवानी बन गई थी, मुरली के पीछे। और सच में ही आप मुरली ऐसी चीज है ना, आज बाबा की मुरली ऐसी चीज है जो इसमें ऐसा ज्ञान भरा हुआ है ना, जो एकदम एक्सट्रीम्स है, दो एक्सट्रीम्स है। अनपढ़ से अनपढ़ समझ सकता है, और कितना भी पढ़ा लिखा होगा उसके आगे चैलेंज है, दोनों बातें। कितना पढ़ा लिखा होगा वो भी ना समझे, ऐसा हो सकता है। और बिल्कुल अनपढ़ माता होगी वो भी समझ सकती है, और वो खुशी में है ना, वो अतीन्द्रिय सुख में, वो खुशी में। मुझे याद है कि एक बार एक बहन अपनी थी, बीके बहन, माता मतलब माता थी, उसका ऑपरेशन था। एक तो उसको कैंसर था, कैंसर का ऑपरेशन था, पर कैंसर के बाद भी खुश, सदा खुश है ना। अरे वो तो भगवान का बुलावा आया है, तो बाबा तो साथ में लेके जाने वाले, क्या है हमको। अच्छा, तो उसका ऑपरेशन था, तो हॉस्पिटल में दाखिल हो गई, तो भी खुश खुश। तो डॉक्टर को देख के आश्चर्य लगे कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसी बहन है, इसको इतनी खुशी क्यों होती है। अभी कैंसर है तेरे को, ऑपरेशन होने वाला है ना, डॉक्टर ने मन में सोचा। फिर डॉक्टर जब मिलने गए, डॉक्टर कहते आप चिंता मत करो, आप नहीं करने वाले ऑपरेशन, वो तो मेरा बाबा करेगा, आप तो निमित्त है ना, डोंट वरी। अरे डॉक्टर कहते मेरे को कहती है डोंट वरी, मुझे उनको समझाना चाहिए कि चिंता मत करो, वो मुझे कहती है कि चिंता मत करो। तो डॉक्टर ने हमें सुनाया कि मुझे जैसे मैं उसके पास आता था तो मुझे एक एनर्जी मिलती थी उससे, इसलिए फिर जितना दिन वो रही हॉस्पिटल में, सबसे पहले मैं इनके पास आता था, इनसे बातचीत करके 5 मिनट बातचीत करके फिर मैं और पेशेंट को देखने जाता था। मुझे लगता था जैसे मुझे एक एनर्जी मिल रही है। अब देखो, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि सामने वाले को लगता है कि जरूर इनको कुछ मिला है ना, नहीं तो आज की दुनिया में इतनी खुशी कभी हो नहीं सकती। तो ये है मुरली, मुरली तो रोज मुरली क्लास करना, ये ब्राह्मण का नियम है। और एक बात विशेष ब्रह्मा कुमार कुमारी की बात है, नियमित यज्ञ सहयोग। मैं कहती हूं ब्रह्मा कुमार कुमारी वो जिनको बाबा के यज्ञ की पड़ी है, जो खुद को बाबा के यज्ञ के लिए क्या समझते हैं, जिम्मेदार समझते हैं, जिम्मेदार समझते हैं। एक बार हंसी में मैंने माताओं के क्लास में कहा था, आप सबको एक बाबा को फोटो मिला है, मिला होगा ब्रह्मा बाबा का फोटो, अब एक तो बाप दादा का, क्या लिखा है, बच्चे आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना, ऐसा है ना। तो मैंने कहा कि भाई हमको ये बाबा को कहना कि बाबा चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना, समझा क्या, जिम्मेदार आत्मा क्या कहे, खुद बाबा को कहेगी बाबा हम है ना, कौन है, मैं हूं ना, हाँ बाबा की सहयोगी मैं हूं ना, कोई हो या ना हो परंतु मैं हूं ना। तो ये एक नियम की बात है कि बाबा के यज्ञ में सहयोग सभी देते हैं, बहुत करके सहयोग तो सभी देते ही है, परंतु कई होते हैं जो मन मर्जी से, कभी मर्जी हुई तो दिया, मर्जी हुई तो नहीं दिया, मतलब नहीं दिया, नहीं देने का भाव नहीं होता है, पर चला गया, एक महीना चला गया, 2 महीना चला गया, फिर अरे अरे ये सहयोग देना दे दिया, जो भी देना था, नहीं ऐसा नहीं, नियमित। क्यों नियमित और कैसे, तो जैसे हमारे यहां बहुत लोग करते हैं ऐसे कि भाई प्रसाद किसको कहा जाता है, जब भोग है वो भोग बाबा को हम ऑफर करते हैं, उसके बाद वो क्या बन जाता है, जैसे कि प्रसाद बन जाता है, भोग बन जाता है। उसी प्रकार हमारा जो भी इनकम हमारी आती है ना, हर एक का अपना अपना, पर बहुत करके जो जॉब करते हैं उसकी तो फिक्स इनकम फिक्स टाइम पर आ जाती है, अथवा जो व्यापार करता है उसका भी अपना हिसाब किताब करके वो एक महीने में वो हिसाब किताब पूरा कर। तो सबसे पहले किसका हिस्सा निकालना चाहिए, सबसे पहले बाबा का हिस्सा, बाद में जो है वो हमारा क्या बन जाता है, जैसे कि प्रसाद। आप जो भी खर्च करते हैं ना, वो एक प्रसाद के रूप में आप खर्च करते हैं तो उसमें बरकत आती है। जो करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो अगर ना करते हो तो ट्राई करके देखे, ट्राई करके देखे। तो ये भी एक हमारा अपना नियम, हर एक का निजी नियम, बाबा का नियम कंपल्शन नहीं है। कितना करना वो हर एक की अपनी बात है ना, अपने अनुसार, पर करना वो हमारा नियम होना चाहिए। पाई भी क्यों ना करें हम। मुझे याद है, मैं आपको बताऊं कि हमारे सेंटर पर एक बहन आती थी। बहन तो क्या मतलब, वो मेहतर थी, सेंटर में सब साफ सफाई करेगी और उसको पगार कितना, पगार बोलती थी वो, पर कितना, उस बहुत समय पहले की बात है, मेरी 25-30 साल पहले की बात, तो 5 रुपया इसको मिलता था एक महीने में, कितना 5 रुपया। तो वो बोलती मेरा पगार 5 रुपया में, वो मेरा पगार 5 रुपया है। तो मुरली सुनती थी, पर साफ सफाई करके फिर मुरली भी सुनेगी या फिर जाएगी, तो हर महीने में वो अवश्य 1 रुपया करेगी। बोला बहन जी मेरा 1 रुपया मुझे भंडारी में जरूर डालना है। आप देखो 1 रुपया क्या होता है, परंतु वो क्या है, भाव। आज भी वो, मतलब उसको तो ब्रह्मा कुमारी बनना था, पर उसके मतलब न्याज जात वाले उसको नहीं अलाउ करते थे कि तुमको कोई रखेगा नहीं, ठीक नहीं रखेगा, क्योंकि समझते ना मेहतर है कौन रखेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कोई, पर वो लोग अपने आप में थोड़ा हिचकिचाहट करते हैं। तो पर आज भी वो बॉम्बे में है, बहुत अच्छी लाइफ में है। आज भी आएगी सेंटर में, आएगी कुछ ना कुछ करके जाएगी। आप सोचिए क्या कर, कितना करना इम्पोर्टेंट नहीं, परंतु करना, मेरे मन में संकल्प चलना चाहिए, मेरे मन में करने का, जिम्मेदारी का संकल्प करना चलना चाहिए, वो मुझे जिम्मेदार बनाता है। तो ये भी एक हमारा नियम हो, तो ये हमारे ब्राह्मण जीवन के नियम है। कुछ नियम बाबा ने बताए हैं इस बारे में भी कि ब्राह्मण परिवार में लेन देन नहीं होता। अभी आजकल कैसा चलता है मुझे कम पता चल रहा है, परंतु ब्राह्मण परिवार में हमें क्या कहते हैं, उधार नहीं देना है और उधार लेना नहीं, किसी से भी लेना नहीं है, किसी को देना नहीं है ना। उसके लिए रमेश भाई ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था अपना, रमेश भाई जी जो हमारे हैं ना। तो रमेश भाई ने कहा कि एक बार ऐसे हुआ कि हमारे वहां एक क्लास में, बाबा के क्लास में आता था भाई, बहुत गरीब था। तो उस समय की बात है, बाबा के समय की बात, इसलिए उसने बोला कि, रमेश भाई को बोला कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए, तो 100 रुपया से मैं व्यापार करूंगा और 10-10 रुपया करके तुमको वापस दे दूंगा। तो रमेश भाई कहते मैंने यहाँ बाबा को फोन किया कि बाबा ऐसे ऐसे एक भाई मांगता है तो क्या करे, देवे। बाबा का नहीं बच्चे तुम मत दो, नहीं दू, 100 रुपये में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने तो भाई, बाबा मना करता है, फिर तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो, कोई बात नहीं, तुम जो चाहे सो करो। तो रमेश भाई कहते मैंने सोचा कि 100 रुपये में क्या है, बाबा भी कमाल का है, 100 रुपये में क्या चाहते, मैं दे दिया 100 रुपया। अच्छा दे दिया, तो फिर पहले महीने में तो 10 रुपया उसने वापस दिया, दूसरे महीने में भी दिया, और फिर आना ही बंद। फिर क्या हुआ, आना ही बंद। तो बाबा को सुना, एक बाबा ऐसा, बाबा कहते मैंने कहा था ना तुमको, तेरा तो पैसा गया पर मेरा तो बच्चा भी गया, तेरा तो खाली पैसा गया पर मेरा तो बच्चा भी गया, इसलिए मैं तेरे को मना कर रहा था। आप सोचिए, इसलिए बाबा मना करता है, क्योंकि पता नहीं चलता है ना। तो ये एक नियम है, एक मर्यादा है, एक नियम है, एज फार एज पॉसिबल कुछ भी अगर करना है तो निमित्त से पूछ करके, यज्ञ से पूछ करके, कुछ ऐसी एक्सेप्शनल केस है तो। आजकल यज्ञ में बहुत ऐसा हो रहा है, जिन्होंने दिया है उनकी स्थिति बहुत बिगड़ गई है, उनको वापस मिला नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, ऐसा बहुत चल रहा है आजकल। इसलिए बी केयरफुल, क्या है, सावधान, बहुत करके सावधान। लोभ में आके लोग करते हैं, कहीं ऐसे भी नहीं करते, पर कई लोग हम तुमको डबल करके देंगे, हम तुमको बहुत फायदा कराएंगे, तुम्हें बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा सोच के करते हैं, परंतु ऐसे में हमें जाना नहीं है। इन पर्टिकुलर ब्रह्मा कुमार कुमारी हमारे परिवार में, ईश्वरीय परिवार में लेन देन से मुक्त रहना है। अच्छा ये बात है। और फिर बात है, जैसे एक है नियम, एक होते हैं नियम और दूसरा होता है संयम, संयम और मर्यादा, संयम अथवा मर्यादा, दोनों में क्या अंतर है? नियम तो नियम होते वेल डिफाइंड, भाई ये तो नियम है ना, वो नियम फॉलो करना है। पर संयम क्या होता है? संयम वाले सबका अलग अलग होता है, हर बात का संयम, संयम अपने आप। देखो शुद्ध भोजन में हमें ये बता दिया कि भाई तुम्हें पवित्र हाथों से बना हुआ भोजन खाना है, मतलब जो तामसिक चीजें हैं, लहसुन प्याज नहीं खानी, इतना बस। बाकी फिर तला हुआ नहीं खाना ऐसा नहीं बोला, मीठा नहीं खाना ऐसा नहीं बोला, तीखा नहीं खाना ऐसा नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उसके लिए क्या चाहिए? वहां भी संयम काम आता है। तुमको छुट्टी है परंतु तुम्हें संयम अप्लाई करना है। जितना आपके अपने स्वास्थ्य को अनुकूल आता है उस अनुसार, न केवल उस अनुसार परंतु तुम्हारा मन न जाए उस अनुसार। मन नहीं जाना चाहिए, खाया परंतु वो योग में याद नहीं आना चाहिए, है ना। आप कहेंगे वो कल आपको मिला ना, क्या मिला? पकोड़ा मिला, आलू वड़ा मिला, तो योग में आप बोलेंगे आलू वड़ा था बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है ना। संयम उसके लिए चाहिए, क्योंकि कर्मेंद्रिय जो है ना टेस्ट, वो बैक फिर से हमें याद दिलाती है, वहां मन जाता है। तो इसीलिए संयम की आवश्यकता है, टू कंट्रोल। यस, संयम मीन्स कंट्रोल। आपको कहां नहीं जाएगा, वेल डिफाइंड नहीं है, पर आपको अपने आप करना है। हाँ क्या? नहीं, बाबा पालना करेगा, बाबा सब कुछ देगा, पर संयम किसको रखना है? कभी कभी ऐसे होता है पार्टी में, ग्रुप में नीचे कोई लोग आते हैं ना, तो डायबिटिक होते हैं। घर में तो लोग ध्यान रखते हैं, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, तुमको डायबिटीज है। यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं, तो एक माता बराबर खा गई हलवा और बिल्कुल तबीयत खराब। आप देखो, तो वहां पर तो सेल्फ को करना पड़ता है ना, खुद को करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। तो एक स्थूल थोड़ा संयम है, उसी प्रकार मन का संयम। बाबा ने हमें जो योग कहा है, सिखाया है, सार रूप में कहा है, मन मनाभव है ना, मन मनाभव, तुम अपना मन मेरे में लगाओ। सिंपल बात है, मन मेरे में लगाओ, सिंपल से सिंपल। और बाबा क्या कहते, कभी कभी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, क्योंकि अभी विषय सागर है इस दुनिया में। क्या है? विषय सागर। विषय सागर अर्थात, हाँ, विषय अर्थात सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स विषय। बहुत सब्जेक्ट्स है मन को भटकने के लिए, बहुत बातें, बहुत सब्जेक्ट्स। इसलिए क्या कहा? देह, देह के संबंध और देह के पदार्थ। और पदार्थों में भी कितना विस्तार, कपड़ों को ले लीजिए, मकानों को ले लीजिए, फर्नीचर को ले लीजिए, बर्तनों को ले लीजिए, गहनों को ले लीजिए, कितना विस्तार है आप देखो, कितना विस्तार है। और उन सब में मन जाता रहता है, मन जाता रहता है। मन को जाने की बहुत जगह है, मन को भटकने के लिए बहुत जगह है। अब उनको समेटना है, पुरुषार्थ क्या है हमारा? मन को समेटना है, और मन को समेटने के लिए मन का संयम चाहिए, संयम चाहिए, है ना। आजकल नहीं तो देखो दुनिया में, मुझे तो लगता है कि एक क्या शब्द है, शॉपिंग, शॉपिंग बड़ा खतरनाक शब्द है, खतरनाक। पहले तो हम क्या कहते थे कि भाई हमें कुछ लेना है तो भाई हम सब्जी लेने जाते हैं, अच्छा हमें घर में चद्दर लेने जाते हैं, तो कुछ लक्ष्य था कि जाते थे। अब क्या कहते, शॉपिंग, क्या जो मिला वो ले लें, और शॉपिंग का कहते, कई लोग कहते मेरे को शॉपिंग का बहुत शौक है। अरे शॉपिंग का कोई शौक होता है क्या? परंतु मन को भटकने का रास्ता, धन को बर्बाद करने का एक रास्ता। तो इसमें क्या चाहिए? संयम चाहिए, मन को संयम में रखना है। सब कुछ मिलता है, हमारे पास है, बाबा के धन है तो क्यों नहीं यूज करो, ओके, परंतु संयम ये हमारा काम है। आदत डालनी पड़ेगी, संयम का क्या करना पड़ेगा? आदत डालनी पड़ेगी। कर्मेंद्रियां मांगेंगी, जिसको बहुत टेस्टी खाने की आदत है वो तो आधी रात को भी बना के खाएगा, सो नहीं सकेगा, है ना। परंतु वहां फिर क्या चाहिए? मन को बोलना पड़ेगा कि तुमको अभी आदत थी पहले वाली, अभी नहीं मिलेगा, है ना। जो बहुत टेस्टी लगता है, जिसमें मन जाता है, तो मुझे लगता है कि पुरुषार्थ में तो उसको रोक देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिसमें बहुत इंटरेस्ट है उसको ही खत्म करो। तुमको पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, अभी 6 महीने नहीं मिलेंगे, जाओ। मन को ही, है ना, मन को जो बहुत अच्छा लगता है ना, जिसमें जाता है मन, तो उसको तो थोड़ा संयम में रखने की जरूरत है। उसको पुरुषार्थ कहते हैं, इसको पुरुषार्थ कहते हैं ना। खाली मूली पढ़ने को पुरुषार्थ नहीं कहते, अपने अपने आप जो धारणा करनी है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो एक है मन का संयम। सभी बातों में विस्तार है, परंतु अभी शॉर्ट में हम लेंगे। दूसरी बात है वाणी का संयम। वाणी का संयम क्या है? सिंपल, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। विस्तार आप कर लेना, पर एज फार एज पॉसिबल हम कम बोले तो बहुत अच्छे। किसी का बहुत बोलने का स्वभाव होता है ना, वो भी जरा खतरा ही है। बाबा इसलिए कहते हैं कि फुल स्टॉप लगाओ। कभी कभी बाबा मूली में कहते, 2-4 दिन पहले बोला मुंह में मुलरा डाल दो, बोले बिना नहीं रह सकते तो कुछ डाल दो मुंह में। मुलेरा क्या है पता है? हाँ, क्या? हाँ, जैसे वो तेल का डिब्बा आता है तो उसमें क्या करते, एक लकड़ी का होता है, लकड़ी होती है, बीच में आजू बाजू कपड़ा होता है ना, वो मुलेरा कहते, तो वो ऐसा डाल दो मुंह में। डूचा कहते हैं गुजराती में। अच्छा अच्छा, उसको भी मुलेरा बोलते हैं। तो ऐसा कोई मुंह में डाल दो तो बोलना बंद। हाँ, क्या? अच्छा हाँ, वो लगाते, पर वो तो फिर भी बोल सकते। तो इसीलिए कि बोलना बोलना कम करने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक व्यक्ति भी चुप कर सकता है ना, बाबा के 2 व्यक्ति बोले, एक तो चुप करे पर नहीं होता जल्दी से। 2 बोलते हैं कि आप तो हमको ही चुप रहने को बोलेंगे, आप सामने वाले को बोलो ना। तो वाणी का संयम, जब चाहिए तब, आप जब चाहो तो चुप हो सको और जब चाहो तब बोल सको, है ना, इसको संयम कहते हैं। मौन रखना इजी है। आज आपने मौन व्रत ले लिया कि आज मेरे को नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, इजी है। परंतु कम बोलना पुरुषार्थ, इसको संयम कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा ने कहा कि हमें वाणी को एक तो कम बोलो, फिर धीरे बोलो, और अगर बोलना ही है तो फिर मीठा बोलो, है ना। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्या? सत्य बोलो। सत्य बोलो, है ना, और सोच के बोलो। कहा जाता है दुनिया में कि अगर कोई व्यक्ति वाणी का संयम, जितना जितना वाणी का संयम रखते जाएंगे उतना वाणी वरदानी बनती जाएगी। वरदानी का अर्थ यह है कि आप जो कहेंगे वो होगा। फिर है कर्म का संयम। जो मन में आया वो कर लिया, ऐसा नहीं, परंतु जो नियम है उस अनुसार ही कार्य करना। जिसको बाबा ने कहा है मेनली कि सेवा करना है, वो भी कैसे करना? श्रीमत अनुसार सेवा करना। श्रीमत अनुसार सेवा। हमारी ईश्वरीय मर्यादा में सेवा में ऐसा आता है कि बाबा ने हमेशा बहनों को आगे रखा है, ये हमारी मर्यादा है बहनों को। बाबा बड़ा चतुर सुजान है ना, बहनों को आगे रखने के पीछे बाबा के बहुत मतलब आइडियाज थे। तो बाबा ने हंसी में एक बार कहा कि देखो बाबा की बातें सब कैसी है, ये एकदम संसार से भिन्न है, हैं? कहेंगे भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो लोग तो है ना झगड़ा करने लग पड़ेंगे। फिर कहेंगे कि भाई गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। लोग कहेंगे भाई मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, पशु योनि में नहीं लेता है। ये ऐसी ऐसी बातें बतानी है संसार समाज वालों को। तो बाबा ने कहा कि बहनों को आगे रखना अच्छा है। कहते हैं कि एक बार ऐसे हुआ, निर्वैर भाई जी को बड़ा खराब लग रहा है कि क्या बेने बेने बाबा करता रहता है। तो हम भी तो है ना, उसमें हमको सुनाना नहीं आता है कि हमको भी तो आता है सुनाना। तो गए एक बार बिना बहनों को लिए हुए, तो प्रदर्शनी वगैरह था तो लेके चले गए और यही बातें आ गई तो मारा मारी हो गई, मार पड़ गई। फिर आके बाबा को बोला कि बाबा ऐसे बाबा की स्थिति में कहता हूं तुमको कि बहनों को आगे रखो ना, बस बहनों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कारण है, ये नियम है कि भाई बहनों को आगे रखो हमेशा, ये मर्यादा है। देखो बहन बिना पढ़ी लिखी भी हो सकती है ना। हमारे पास एक बहन थी तो मतलब अनपढ़ी जैसी, 10th 11th पास किया था तो क्या आता है ना, बाबा तो इंग्लिश बोलता है बहुत मुरली में कभी कभी, तो कहती है कि मैं क्या करती हूँ फिर मेरे को पता नहीं होता है इसका अर्थ। तो मैं वो पूछ लेती हूँ सबको, पता है आपको इसका अर्थ क्या है, बताओ 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 करके जान लेगी बस, उसमें क्या हो गया। तो बाबा कहते बहने कैसी भी है परंतु निमित्त बाबा ने किसको बनाया है, निमित्त बहनों को बनाए, निमित्त बहनों को बनाए। भाई है पीछे बहुत एजुकेटेड है, और मेरा तो अनुभव ऐसा है भाई आपको बताऊं, बहने कहीं एजुकेटेड भी होती है पर हम ये नहीं कह सकते कि जो एजुकेटेड है वो क्लास कराएगी तो ही वो व्यक्ति बाबा का बनेगा, नहीं। ऐसे कई मैंने देखे हैं जो बड़े बड़े कलेक्टर होंगे कमिश्नर होंगे और बहन जो कोर्स करा रही है एकदम सिंपल कॉमन, तो भी सामने वाले की बुद्धि में उतर रहा है। ज्ञान किसका है, ज्ञान उनका है ना, सुनाता कोई भी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी बाबा कहते हैं कि अगर कोई बहुत ऐसा व्यक्ति आ गया तो क्या करता है, मैं भी प्रवेश होके भी समझा लेता हूं, जिम्मेदारी उसकी है। तो ये हमारा यज्ञ का, बाबा के यज्ञ का ईश्वरीय नियम है कि हमें सेंटर पर या जहां भी क्लासेस है पाठशाला है सेंटर है तो बहनों को हमेशा हम आगे रखते हैं, वो बाबा का जैसे कि नियम है मर्यादा है कर्म में। अच्छा दूसरा कर्म की एक बात लास्ट बता देते हैं कि हर संबंध में मर्यादा से कर्म और व्यवहार, आपकी बात है घर गृहस्थ में रहने वालों को भी हर संबंध की भी अपनी मर्यादा है, माता पिता है उनके साथ की अपनी मर्यादा है, अभी बाबा के ज्ञान में आके पति पत्नी के बीच की भी अपनी मर्यादा है, बच्चों के साथ की भी मर्यादा है। मर्यादा इसीलिए है कि जो ज्ञान पूर्वक प्यार से मोह से नहीं परंतु प्यार से जो बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं वो बच्चों को बहुत अच्छा पालना कर सकते हैं, जो मोह के वश पालना करते हैं बच्चों की पालना ठीक से नहीं होती, वो सीखते नहीं है ठीक तरह से पढ़ते नहीं है, जिसको बहुत मोह है वो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं उसका कल्याण भी नहीं कर सकते। इसलिए हर संबंध की अपनी मर्यादा है, मित्र संबंधी है अड़ोस पड़ोस है सगे संबंधी है हर एक के साथ बोल चाल कर्म व्यवहार सबके अंदर क्या है मर्यादा है, उसी मर्यादा में चलना है। आजकल दुनिया बड़ी विचित्र है ना, दुनिया बड़ी विचित्र, आप जरा सा भी ज्यादा बोल दिया ना तो आपके पास एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ती जाएगी। अड़ोस पड़ोस में आपने सोचा कि क्या जाता है उसमें, चलो ना आज थोड़ा हमने अच्छा कर किया है भोजन, तो उसको दे देते हैं कि भाई चलो आप भी खा लो। कल क्या होगा, वापस आएंगे, एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। इसीलिए अभी जबकि हम बाबा के सब बच्चे ऐसे बन गए हैं जो नई दुनिया के लिए निमित्त है, और बाबा ने हमें अपना बनाया है, हमारी एक अपना लक्ष्य है, रूहानी यात्रा का हमारा लक्ष्य है, तो हमें तो धीरे 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 अपने आप को क्या करना है, समेटना है, समझा। तो इसीलिए हम जितना जितना सोच के समझ के मुरली में जो आता है, मुरली में जो आता है, जो बात आती है मुरली में, वो भी थोड़ा अपने लाइफ के साथ उसको टैली करना है, अपने लिए सोचना है और उसको जीवन में जरूर धारण भी करना है। तो इसीलिए बाबा ने पौधा तो लगाया है, पर हमें अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, देखो वृक्ष तो होता है परंतु एक होता है हरा भरा फलदायी वृक्ष और एक होता है एकदम सूखा वृक्ष। तो हमें क्या बनना है, हरा भरा फलदायी वृक्ष, अर्थात कि हमारा जीवन ऐसा हो जिसमें हमें भी प्राप्ति हुई हो और हमें देख करके औरों को भी महसूस हो कि नहीं, जीवन देखना हो तो इसका, परिवार देखना हो तो ये है ना, मर्यादा देखनी हो तो ये व्यक्ति, नम्रता देखना हो तो इसमें, ऐसे हम एग्जाम्पल बने जो सामने वाले व्यक्ति देख भी सके। तो हमें ऐसा बन करके बाबा के यज्ञ के सहयोगी बनना है, और क्या सोचना है, बाबा को क्या कहना है, बाबा बाबा चिंता मत करो, जल्दी जल्दी सतयुग आ जाएगा, मैं हूं ना, है ना, याद रखना। ओम शांति।
तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।